ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। संकर्षण कारण तोय साई गर्भोदसाई च पयोधिसाई शेषस्य यस्यांश कला सनित्यानन्दाथ रामः शरणं ममास्तु। आज श्री श्री बलदेव जी का की आदिर्भाव तिथि है। गर्गसंहिता के अनुसार में अभी इसके बाद में जो महीना आएगा उसमें बलदेव छठ के दिन में बलदेव जी का आदिर्भाव मना गया है।
राधाष्टमी के दो दिन पहले
छठ में, और ब्रज में वही सब जगह माना जाता है। किंतु इसमें कुछ अड़चन है। यदि बलदेव जी को कृष्ण से उस समय में मानते हैं तो कृष्ण से कितने दिन, एक वर्ष के करीब में बड़े होते हैं। किंतु कृष्ण ने और बलदेव जी ने साथ ही साथ उनका नामकरण हुआ, साथ ही साथ में रिंगण लीला किया, घुटरुओं पर चले, साथ ही साथ सब उनका काम हुआ। इसलिए जीव गोस्वामी ने कहा जे नहीं, बलदेव जी का जन्म कृष्ण से केवल कितना 8 दिन केवल पहले हुआ है, इससे सबका सामंजस्य हो जाएगा, तब दोनों का एक ही साथ में खेलना धुलना और सभी काम ये ठीक से हो जाएगा। इसलिए उन्होंने पूर्णिमा के दिन में बलदेव जी का जन्म तिथि माना है। इसके संबंध में, बलदेव जी के तत्व के संबंध में अभी श्रीमान रसानंद ब्रह्मचारी जी इनके तत्व पर कुछ विश्लेषण करेंगे।
मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव
करेगा नहीं वो वस्तु हम कैसे पाए नहीं सुनेंगे तो हमारा मन हमारा जो जी जीव प्रकट होते हैं, कहते कुछ बद्ध जीव और कुछ मुक्त जीव प्रकट होते हैं। उसमें कुछ तो इसी जगत में हम जैसे दुर्भाग्य व्यक्ति आ गए और कुछ जीव भगवान का सेवा के लिए चले गए, ब्रह्म को सेवा के लिए चले गए। इसलिए जो बलदेव प्रभु जो प्रकट हुए जीव के, तुमको पता ही नहीं माया जगत क्या होता है, वो तो नित्य सेवा में ही भगवान का नित्य सेवा में नित्य काल को सेवा कर रहे। इसलिए बलदेव प्रभु तरह तरह से कृष्ण सेवा करते हैं, इसलिए बलदेव प्रभु को छोड़ कर गई, इसलिए उनका नाम बलदेव है। बल मतलब शक्ति, देव मतलब शक्ति की जो मूल अधिष्ठात्री देवता। कहते कौन सा शक्ति की, कहते भक्ति रूपी शक्ति की। इसलिए कहते नायम आत्मा बलहीन न लब्ध, इसलिए आत्मानुभूति आत्मा कहते बलहीन व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए कहते बल को कौन प्राप्त कर सकता है, कहते इसके अंदर में भक्ति की बल है। कहते बल को
पूरे दिन है
गद्दी, बड़े आदर और प्रेम करें। लेकिन जब वो गद्दी के पास में जाती है फिर आदर नहीं करती, फिर क्या करती है, गधा लात मारती, गधी गधी लात मारती गधा को। कहते विश्वनाथ का भी कहते हैं उसी तरह का जो जीव है इस संसार में तीन बार परिश्रम करता है, परिश्रम करके सोचता है जब स्त्री के पास में जाकर सब सुख मिलेगा, लेकिन वहां तो सुख मिलता नहीं, फिर लात मारती है। कहते जीव जो भगवान को भजन को छोड़ करके इस संसार का विषय तरफ में ये संसार के सुख के लिए जो पाना चाहते हैं जितने सारे महिला कपड़ा और जितने सारे सामान को ढो करके ले जाता है, लेकिन उसको मालिक कभी अच्छा खाना नहीं देता, कोई भूसी खाता है, कभी चावल नहीं खिलाता, कभी लस्सी नहीं खिलाता नहीं, लेकिन पीठ पर सब कुछ ढोता है। क्या उसी तरह हम भी संसार में सारे बोझ को ढोते हैं। भक्तिमान ठाकुर ने कहा सही गाथा है या संसार रे बोझा वही नु अनेकता, संसार रे बोझा वही नु अनेकता। क्या तुम्हें गधा बन करके संसार का जो बोझ को बड़े दिन तक हमने ढोते रहा, लेकिन जीवन में प्रभु जीवन में हमें कुछ भी सुख नहीं मिला, बल्कि हमें बंधन मिला है। गर्भ गर्भता ही बड़ी परिश्रम तार लाती कितने बड़ी नागूच लक्षण। जब इसके लिए हमने किया है, कभी हमने किसी को सोचा है इसके लिए दिन भर गर्मी जैसे परिश्रम कर रहे, कश्यप का पुत्र पुत्रा क्या हो गए वही कारण, कौन जिसको बेटा बेटी है इस जगत में जो पृथ्वी दिखती है वो प्रेम नहीं, वो संपूर्ण काम है, एक दूसरे से जो आनंद की अनुभूति होता है केवल वह स्वार्थ है, अपना स्वार्थ टूट जाए देखना कौन किसको कितना प्रीति करता है, उसी समय सारे प्रीति खत्म हो जाएगी। इसलिए इस जगत में प्रेम नहीं, इस जगत में काम है, इसलिए हमारे हृदय में ये जो गधापन बैठा हुआ जिस सांसारिक सुख के लिए हम पागल जैसे हम भागते हैं, श्री बलदेव प्रभु सर्व रखा वो गर्भवास को बंद करके हाँ जीव हृदय में कृष्ण पत्र में बीज को श्री बलदेव प्रभु हृदय में बोलते हैं। कहते बलदेव प्रभु वो द्विजित बंदर को भी मैंने बंद किया है, कहते द्विजित बंदर राम लीला में बड़े राम की सेवा की, लेकिन लक्ष्मण के लिए उनको कोई श्रद्धा भक्ति नहीं था, कहते ये उसको अंदर कुछ है, लेकिन राम को बड़े भक्ति करता है, लेकिन धीरे धीरे रामलीला के बाद में जो कृष्ण लीला है वही लक्ष्मण भी बलदेव प्रभु का रूप में आए, लेकिन इसी अवतार में भी बलदेव का प्रति तरह तरह का, जिस समय बलदेव प्रभु अपना माही सीमा को लेकर पीड़ा विलास कर रहे थे उसी समय तरह तरह से उनके प्रति उल्टा सीधा व्यवहार किया, बलदेव प्रभु कोशिश किया उसको माफ करने के लिए, लेकिन इतना उल्टा सीधा किया लास्ट में बलदेव प्रभु फल से खींचे और मूसल से मार करके उसको टकरा कर रख दिया। कहते उन्होंने क्या शिक्षा दिया, कहते उसका नाम था दुई बीज, दुई मतलब दो, बीज मतलब होता है जानना, इसका मतलब है हम तो खूब भगवान का भक्ति करेंगे, खूब भगवान का नाम करेंगे, लेकिन गुरु जी को आदर नहीं करेंगे, उनका भक्तों को भगवान से अलग समझते हैं, भगवान को भक्ति करें लेकिन साधु गुरु वैष्णव की हम सेवा नहीं करते, उनका अलग दो दो समझते हैं, लेकिन गुरुदेव कौन है, कहते साक्षात हरि वेना समस्त शास्त्री, कृष्ण कहते हैं आचार्य मान विजानियार, आचार्य मेरा ही स्वरूप है, और जस्य देव पराभक्ति जथा देवे तथा गुरु, जैसे भगवान का प्रति उसी तरह गुरु जी का प्रति भक्ति ज्यादा करनी चाहिए, ऐसे जो व्यक्ति भगवान से गुरुदेव को भक्तों को भगवान को भक्ति करते हैं लेकिन गुरुदेव को अनादर करते हैं, बलदेव को कहते हैं मैं स्वयं उसको बध करता हूँ, उसको मैं स्वयं मारता हूँ, इसलिए आप लोगों को पता है कैसे बलदेव प्रभु हाँ जिस समय हुए कौन सा चंद्र हुए नामेश्वरण में चावल पहुंचे वहां पर कैसे बलदेव प्रभु को अनादर करने का नाते हाँ लोहासन सुत वहां पर भी बलदेव प्रभु उनको भी बच गया, इसलिए जहां पर कहीं गुरु वर्ग को अनादर किसने किया उसी समय बलदेव प्रभु उनको छोड़े नहीं, उनको छोड़े नहीं, लेकिन वही बलदेव प्रभु कहते तरह तरह रूप में वो कृष्ण सेवा करते हैं हर समय, लेकिन कभी कभी बलदेव प्रभु में और कृष्ण में भी कभी विरोध नहीं देखने को मिला, विरोधाभास जैसे कभी देखने को मिला, हाँ कृष्ण कुछ कर रहे हैं लेकिन बलदेव प्रभु को देखने को मिला वो कुछ दूसरे दूसरे कर रहे हैं, सुभद्रा की अपहरण हो गई। हाँ, बलदेव प्रभु चाहते थे सुभद्रा जी को क्या करे, श्री तुलजे प्रभु साथ में शादी करा, क्योंकि बलदेव प्रभु उनका दो शिष्य है, एक भीम और एक दुर्योधन, दोनों को उन्होंने गदा युद्ध उन्होंने सिखाया, इसलिए गदा युद्ध अभी, लेकिन वो ज्यादा छुटे हुए श्री दुर्योधन का प्रति, इसलिए उनको इच्छा है सुभद्रा के साथ ही दुर्योधन के साथ में हो, और दुर्योधन भी सेवा करके गाँव भैया तो भोले है, बड़े सेवा करके उनसे ये चीज मांग लिया, दाऊ भैया ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन कृष्ण ने देखा मेरी बेटी सुभद्रा, हाँ कहती ये दुर्योधन को साथ में दुष्ट को साथ में शादी होगा, इसलिए उन्होंने अर्जुन को उन्होंने द्वारका में बुला लेते, अब अर्जुन संन्यास वेश में आ जाते, संन्यास वेश में आकर के उनको खूब निमंत्रण खूब खिलाया पिलाया, और फिर सुभद्रा को भी कृष्ण बोल देते कि अर्जुन आया है, इसलिए वहां पर बलदेव प्रभु स्वयं अर्जुन को बोल करके उन्होंने सुभद्रा को उन्होंने अपहरण करवा लिया, दाऊ भैया को जब पता चला तो ये अर्जुन ने संन्यास वेश में भी वो उन्होंने सुभद्रा को अपहरण कर लिया, उसी समय बलदेव प्रभु ताव आ गया, क्रोध आ गया, ये कैसे कर सकता है, उन्होंने हाथ मसल लेकर के अर्जुन को मारने के लिए दौड़े, उसमें कृष्ण का भैया कहां जा रहे हैं, तेरे को पता नहीं वो जो संन्यास वेश में आया था वो संन्यास नहीं वो अर्जुन है, तेरे क्या हुआ, तेरे को सुभद्रा को अपहरण करते हुए ले जा रहे हैं, भैया अच्छे करके जा रहे तो देखो तो सही कौन किसको अपहरण कर रहा है, उसी समय स्वयं द्रौपदी सुभद्रा को तो अर्जुन ने घोड़ा का लगाम पकड़वा दिया, तुम रथ खेचो मैं युद्ध करता हूँ, अर्जुन युद्ध कर रहा था सैनिक के साथ में, बलदेव प्रभु ने देखा अर्जुन अपहरण नहीं कर रहा है सुभद्रा, अर्जुन अपहरण कर रहा है, फिर देखो तो कौन उसी समय कितनी बात सही कितनी नहीं बोले, देखो वहां पर कुछ ये होने पर ही कृष्ण का इच्छा जान करके वो क्रोध को शांत कर देते, भीम से जब दुर्योधन को वध करता है गदा युद्ध का नियम है नाभि को नीचे प्रहार नहीं करे, नाभि को ऊपर प्रयोग, और बलदेव प्रभु गए थे तीर्थ भ्रमण करने के लिए, जब दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध का समय आया उसी समय बलदेव प्रभु आ गए, और युद्ध होते होते भीमसेन ने प्रतिज्ञा किया था घोर युद्ध में जिस जंघे के ऊपर तुम पांचाल को बैठाने के लिए चाहते हो वो जंघा को मैं तोड़ूंगा, सीधा भीम का प्रतिज्ञा, और उनको भी गांधारी की भी आशीर्वाद है, संपूर्ण शरीर उसका वज्र बन गया, केवल जहां पर कच्चा पहन रखा था उसी स्थान पर ही कल कच्चा रह गया, कृष्ण की बात बता रहे कृष्ण ने इशारा किया तो श्री बलदेव प्रभु जंघा तोड़ दी, लेकिन वहां पर दाऊ भैया थे भीम ने जंघा तोड़ दी, वहां पर दाऊ भैया थे देख कर कितना क्रोध आ गया, दुष्ट तुमको हमने गदा युद्ध की शिक्षा दी और तुम लोग मेरे चेले और मेरे सामने इतने युद्ध का विरुद्ध काम करना, अभी तेरे को मैं दिखाता हूँ, दाऊ भैया का बाल दुष्ट को लेकर के एकदम भीम को मेरे टूट पड़े, अभी बलदेव प्रभु साक्षात संधि शक्ति की अधिष्ठान देवता वे अगर क्रोधित हो जाए विश्व ब्रह्मांड प्रलय हो जाएगा, इतने में पंच पांडव ने देखा कि भीम को बचना कठिन है, इतने में सबके सब कृष्ण का तरफ में देख रहे हैं क्योंकि भीम को नहीं बचा सकते, सबके सब कृष्ण का तरफ में देख रहे हैं, लेकिन भगवान गलत चले, इतने में कृष्ण सामने आकर के भैया क्या बात है कहां जा रहे हो, क्या तुमने देखा नहीं ये देखते देखते मेरे सामने मेरा शिष्य और नाभि को जंघा के ऊपर गदा की प्रहार की, अभी मैं उसको दिखाता हूँ, इतने अंधार कृष्ण ने कहा महाराज बताओ भैया थोड़ी तो सोचो इन लोगों ने कितने अन्याय किए है, चतुर्गृह में आग लगाना और कपट पासा खेलना और कुछ दिन पहले नियम होता है एक योद्धा के साथ एक योद्धा युद्ध करे, ये अन्याय रूप में हमारे अभिमन को सत्र सत्तर मिल करके उनको मारे, अभिमन को मारना ले तो अभिमन किसका बेटा है सुभद्रा का बेटा, और बलदेव प्रभु सुभद्रा को बड़ा प्रेम करते हैं, कहते सुभद्रा बेटा अभिमन को अन्याय से तुम्हें मार के कहा हमको पता नहीं कुछ दिन पहले आप तो थे नहीं, उसको सुनते ही शांत हो गए कृष्ण ने इच्छा जान करके उनका क्रोध ऊपर पानी पान कर गया, इसलिए जब जब कृष्ण का इच्छा बलदेव प्रभु कुछ कुछ उनको उनको कुछ विरोधवास कर दिखता है पर कृष्ण का इच्छा जान करके अपना इच्छा को वे उनको इच्छा में ही मिला देते हैं, अपना इच्छा को प्रकाश नहीं करते, इसलिए कहते राम अवतार में लक्ष्मण रूप में आए छोटे भाई रूप में आए थे, लेकिन उनको ऐसे कुछ का काम करना पड़ा जो कि सर्वदा धर्म से विरुद्ध काम करना, सीता को जैसे चिरकाल के लिए त्याग देना, उनके लिए अग्नि की चिता सजाना और कुछ कुछ ऐसे काम किया। इसलिए लक्ष्मण जी ने सोचा छोटे भाई रूप का मेरे नाम है, मेरे को बड़े भैया होने के नाते इतनी कठोर हमें परीक्षा करना पड़ता है, अपना इष्ट देव के लिए अपना आराधना देव के लिए चिता सजाना कितना सर्वोच्च धर्म है। और किसी अवतार में छोटे वर्ग के लिए होगा बड़ा वर्ग के काम है। इसलिए हुए और दूसरे जो दो तो अवतार भी जैसे प्रदेय प्रभु और नित्यानंद प्रभु रूप में उन्होंने बड़े रूप में आए और बड़े रूप में आकर उन्होंने कृष्ण सेवा की। फिर प्रश्न होता है कि कौन सा सेवक का धर्म है, जो कि बड़े बड़े भैया हाँ भगवान की इच्छा के विरुद्ध बड़े वर्ग के आए तो बड़े इसलिए वर्ग के लिए आना चाहे केवल सेवा की भावना के लिए। और नित्यानंद प्रभु अवतार उन्होंने प्रेम की पार बढ़े तो उन्होंने इतना बढ़ाया कहते संसार में पार में या भक्ति रस आगरे जे रूपी में से भजी तो निताय चांदरे हे न निताय जिने भाई राधा कृष्ण पाए ते नाही निताय करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे आवल करुणा सिंधु काटिया कुमार। कहते नित्यानंद प्रभु अवतार बढ़े प्रभु जिस प्रेम के से जब कल रूप शरीर न धारत जैसे श्री रूप गोस्वामी जैसे प्रेम जैसे बद्ध था जैसे रूप गोस्वामी ने वो कपाट को जैसे उभार दिया क्या उसी तरह था लोचन दास ठाकुर कहते हैं श्रीमद नित्यानंद प्रभु आ करके इतने दयाल इतने कृपाल बने कैसे निकाल चैतन्य सुर ना चले हमारा मन है ना दयाल के नागरे मार के प्रेम दे पावे प्रेम जो मार खा कर प्रेम दिया प्रेम दिया और आबद्ध करना जो सिंधु प्रेम की जो सिंधु था उन्होंने आकर के मुहान मतलब एक तरफ में पानी हो दूसरे तरफ में खाली हो मुहान मतलब जिसको काटने पर जैसे पानी जाकर के सभी को सामने जो आए सभी को बहा देते हैं उसी तरह बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु रूप में आकर के महाप्रभु का जो प्रेम की जो भंडार उन्होंने मुहान ऐसे काटे और प्रेम की बाढ़ में उन्होंने सारे जीव को उन्हें बहा दिया।
सभी कुछ तो तुम ही ने बोल दिया और कुछ रखा ही नहीं तो फिर क्या बोलेंगे दूसरे। बहुत सुंदर बोला। ओ यू शुड ट्रांसलेट यू शुड टेल इन ब्रीफ यू शुड टेल ऑल व्हाट ही टोल्ड।
So first of all, I offer my services to Sri Gurudev, Chidam Sanyasi, Vaishnavas, Vaishnavis. So today is the appearance day of Sri Balgav Guru. Like Rasananda Guru said, when you eat a rasgulla, some drops come out. But Rasananda Guru, he took the rasgulla and all the juice and nothing left. So Balgav Guru, here today is his appearance day. He appears on the full moon because he manifests everything. So Gaudi Chandra Sushika. The full moon is very, very cooling. Krishna appears on the Ashtami in complete darkness. Therefore, what manifests Krishna? How you can see him on the Ashtami? Therefore, Baladeva appears first on the Purnima. And he manifests all Krishna's Leela. Therefore, he appears before Krishna because he is the presiding deity of Sandini Shakti. Sandini means existence or platform. Therefore, Baladev comes first to make a platform for the leela of Sri Krishna. Therefore, how he serves Krishna in so many ways. He serves in Shanti Ras, Dasi Ras, Sakhi Ras, Vatsali Ras, and in Madhuri Ras. In Shanti Ras, he manifests himself as this Rajamandal to serve Krishna in so many ways. In Dasi Ras, of course, Krishna prayer makes everybody dance. Therefore, he also feels, I am a servant of Krishna. Because he is 8 days older than Krishna, he has Saki Ras also attached but Sami Ras because he was 8 days older. And lastly, in most conventional Leela, he serves as Ananda Manjari. His Shakti serves as Sri Ananda Manjari. Therefore, Baladev performs all unlimited different types of service for Krishna. The Buddha was saying before, in Vrindavan, especially in Mathura, most people, they celebrate the appearance day of Baladev a few days after the appearance of Krishna. That is called Baladev Jat. But Gurudev said this conception cannot be true, because that means that Baladevji is 1 year older than Krishna. But Sri Jiva Goswami has said this is not possible, because in the Srimad Bhagavatam describes that Krishna and Balaram, they both were crawling together in the Goshala. Krishna and Balaram, they were both took their Nam Karam Sanskar, they both took the name at the same time. So if Baladev was 1 year older, then that means for 1 year Baladev had no name. How possible? So,
but we should tell that what is written in Garga Samhita, it is not true, you cannot tell. So we should make a compromise that in other cults, oh, it was like that.
So Bhagavan performs Leela in every day of Lord Brahma, therefore Garga Samhita cannot be wrong, because Garga Chara, he was directly there in the Namkaran Sanskar, Krishna Bhavaram, therefore what he says must be true. There must be in different kalpas, different days of Lord Brahma, and sometimes very early, comes 1 year earlier. So very astonishing thing came that when the Krishna Baladeva describes the first six sons of Devaki, they were killed by Uncle Kamsa. But this Bhagavatam describes the seventh birth describes to be a miscarriage. But really, Gurudev nicely describes this is not actually completely true. It was given in a hidden form. Actually, Baladev appeared first in the form of Devaki in Mathura. Who is that? That is not Devaki, that is not Rohini Nandan, that is Devaki Nandan. Then he appeared there and he stayed in the womb. How many months he was there? 8-7 months. First in the womb of Devaki Mata. Then, at 7 months, Bhagavatam says that she had a miscarriage. But really what happened at the end of 7 months, that Devaki Nandan, that Baladev in Mathura, he transferred himself to the womb of Rahini here in Vrindavan. And there he stayed in the womb of Rahini for another 9 months. Therefore, total of 16 months, Baladev was in the womb. Therefore, the Ankh, or the expansion of Baladev in Mathura, merged with the original form of Rahini Nandan that is always present in Sri Rajamandal. Baladev, how he expands himself in so many ways for Krishna's service. He expands himself as the three Purush Avatars. First, that Baladev in Vrindavan, Rahini Nandan, he expands himself into Mathura. That Mathuresh Baladev expands himself into the Adi Chakti Chaturvyuha, situated in Dwarka, Vasudev, Sankarshan, Pradyumna, Adiguda. Then that Sankarshan in Dwarka, in the Adi Chaturvyuha, expands itself into the second Chaturvyuha, which is always present in Vaikuntha. Then that Mahasankarshan, he comes in the form of Mahavishnu. Then he expands himself also in the form of Garbhadaksai Vishnu, who is situated in every universe from his navel country. Moses, on the top of that navel, sits Chakrabhu Ramaji. Then again, he expands himself into the form of Paramatma in the heart of every jiva as Hiranyakasai Vishnu. Therefore, really, he is the residing deity of Sandini Shakti, Sandini in existence. Because everything we see, spiritual and material, everything owes its existence on the mercy of the energy of Sri Baladev Prabhu. Therefore, Sri Gargacharya, he did not perform the Namkaran in Mathura. Therefore, Gargacharya came in a secret, hidden way. Otherwise, it comes to Maharaj's knows that Gargacharya has performed the name-giving ceremony of Krishna Balaram, and immediately he will understand, because Gargacharya is the guru of the Rishis, must be the Krishna Balaram somehow related to Vasudev Maharaj. Therefore, he went there in a hidden form. So, Nanda Baba, he gave such a nice welcome to Sri Gargacharya. Priyanam Vinachetta Sama, this is Sama Bhagavan, this is our own thing for you. Nanabala, how great is he? All for my eyes, fully in my hand, with my Krishna and my family. But you are a great saint. For no self-interest, you move here and there to purify the fallen householders. So then, Devaki and, Rahini and Yasoda Mata, they wanted to test Yagacharya. What does he really know? Astrology. Like a real astrologer, just by looking at the lines on your forehead, they can tell everything. They test Yagacharya, they swap the babies. Therefore, Rahini had Krishna and Sri Yasoda had Balaram. But Yagacharya is an all-knowing Vaishnava. Not so easy to cheat him, therefore, he says, I am Rahini, Rahini, Nandam. Pointing to Baladev, who was on the lap of his son, said, this is the son of Rohini. And he described his position. Because he has unlimited strength, Bal, therefore his name is Baladev. He is the presiding deity of all strength and power. Just like Pujapad Rasananda Prabhu was saying. In order to perform bhakti, what type of strength we need? Only taking proteins and vitamins and work, this will not help your bhakti. Therefore, what type of strength we need in bhakti? We need bhakti bala. Who is giving that? That is given by Baladev. Also, his name is Ram, because he's situated in the hearts of all living entities. He's also known as Sankarshan, because he attracts all jivas to the service of Krishna. What is the proof? Gurudeva. Okay,
okay.
Because he is an expansion of Baladev and all are attracted to him. He engages all of the service of Krishna. Therefore, even though Baladev, of course, he is also Bhagavad Tattva, or Rasanandavi. He is Bhagavad Tattva. He is also Visaya Tattva. He also is like Bhagavan, the enjoyer. But still, he always has the mood of being shelter, or pastime Tattva. Therefore, he gives shelter to all the jivas and engages them in the service of Krishna. This is Sri Baladev Prabhu. So Baladev, he has a special expansion or special mercy potency in this material world that is the form of Sri Gurudev. So therefore, Sri Baladev Prabhu, he is Akanda Guru Tattva. He is the Samasa Guru Tattva. He is the sum total of all spiritual masters. From the beginning of Lord Brahma coming down through Nanak Vyas, the Goswamis, all our manifestations are Sri Baladev Prabhu. Therefore, Sri Guru Padma in this world, he attracts all living entities, but not for his own enjoyment. We should not think, oh, Guru is collecting so much, he is having a good life, I will also become Guru, I can also enjoy it. No. Baladev, even though everything is there for him, he keeps everything for the service of Sri Krishna. So Rasananda Guru, I was planning to speak on these pastimes, but Rasananda Guru's widow, Grilla, he took also surviving, he took Bangalore also. So I want to tell one more thing. That Baladev, even though Krishna killed many demons, those demons represent different anattas that we all have. So Baladev, he performs special function of killing some special demons. Because there are some special anattas that we have that only the spiritual master and the Vaishnavas can destroy. There are especially there is the one of Pramambasura. Lamba means very high. Pakasura Lamba means he is very tall. Pramambasura had a very, very high desire. I will also become spiritual master. How can I do that? First I have to finish Baladev Prabhu. Therefore, Pramambasura came disguised in the form of a cowherd boy. Therefore, Thakur Bhaktivinoda says we should be careful in Kali Yuga because many, many false devotees will come disguised as devotee to steal the position of Baladev, to steal the position of Guru Padapatma. But they are killed by Guru Tattva himself. Therefore, Thakur Bhaktivinoda, he said, Ajoev, Kalichela, Mata Veda, Kopin Pada, means, like Mamrasura took the form of false devotee, therefore many false devotees, but many I'm also one of them. Mata Veda, shaved head, Kopin Pada, means sannyasi, Tilakanan, when he knows he has Tilak, Pati Mala, Hadigo, Hadigo, Gade Nate. Everybody calls him Cha Cha. Mamra. Therefore, Pralhada Swami took the form of false devotee, false guru. Then we thought, Krishna Balarama together, maybe difficult to kill him. First, let me kill Baladev, because he is Shakti, he has strength. If I kill him, then Baba Krishna will have no strength, and I can finish Krishna very easily. Therefore, I'm cutting the story very short. Therefore, Krishna and Balaram divided into two groups, and they were engaged in a lila. The rule was the losing group has to carry the winning group on the shoulders. And therefore, one of the glories of Vrindavan, sometimes when the group loses, then Krishna has to carry Sridhar on his back. Then Krishna becomes angry. Why am I carrying you on the back? I won't carry. I don't like the rules of your game. I'm not playing. Then Sridhar becomes very angry. Hey, what type of big man do you think you are? You are not bigger than me. I'm bigger than you. When you took birth, I took birth 2 weeks before you. Remember. Even though your father is Nanda Baba, has 9,900,000 cows, my father is Vishwamitra Maharaj. My father has 1,100,000 cows. Therefore, you are not superior to me by birth, by intelligence, by strength, by wealth, or anything. Actually, we're just doing you a favor, letting you play with us. And if you don't like it, you can get out of here. Then Krishna began crying. Oh, brother, don't throw me from your game. So then I said, you might be a Nikachyama. Without you, who belong, I do not belong to anyone. Therefore, Pralhada saw. He took Baladev on his shoulder. He thought, I'll take Baladev to a lonely place and then I will kill him. But as he was carrying, then he realized Baladev could understand this is not one coward boy, this is one demon. Therefore, Guru means also heavy. Not because he eats too much. Guru Tapa means heavy because you cannot shift him from the service of Krishna. He is not attracted by any yoga, or any city, or any bowl, any aishwarya, any ladies, nothing. You cannot move him from the service of Guru Gauranga. Therefore, he is very heavy. Therefore, Pralhada saw. He could realize the heaviness of Guru when Balaram began pressing his weight on him. Then he could not tolerate the pressure from Balaram. What happens? His real surup came out. Therefore, Balaram could see he is not a sakya. He's not a devotee, he's a demon, therefore Balaram, this is called his character, he finished him. Then these are some of the glories of Baladev Guru. We should think by the mercy of Sri Baladev Guru, we are here in Vrindavan, how much we are lucky. Therefore, Sri Bhakti Raksha Chudamaya said, we are all Tatastha Jiva, that means marginal potency, but Vrindavan is Antaranga Shakti. Then how we can understand something which is higher than our own? Sarup, how can we walk here on the chest of Baladev Guru? Therefore, Shiva Shivananda said, in Vrindavan, we have to learn to walk on our hands. So, Baladev Guru is very kind. He's come as the form of Gurudev, he's come as the form of Dao. So, I'm hoping Baladev Guru may forgive my offenses, which are limited, and one day give me to the service of Dao. See, Baladev Guru, please.
Good translation. He added some more points. थोड़ा सा संक्षेप में कुछ बोल अब तीर्थ महाराज बोलेंगे तब फिर और ये तो सभी कुछ बोल दिए
मुनि महाराज का चांस देना अच्छा है उनको दिया नहीं चाहना से एक बार दिया
वो सुने तो पहले संक्षेप में ही बोलना
गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय ददाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदपुत्राय नमो नमः शंकर संकार साई गर्भोदसाई च दयोदिसाई नित्यानंद नमस्कृतं प्रेमानंद प्रदाय कलो कलमस नाशाय जहन्वापतये नमः राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निर्वाण
कोई राजा महाराजा नहीं हो, एक साधारण व्यक्ति के समान हमारे चरण
लगता है इस तरह से कुछ ऐसा तुम्हारा कृष्ण है। ये सुनकर एकदम से बलराम कहने लगे तुम दोस्त तुमने वो क्या किया, तुम जानते नहीं कृष्ण की महिमा को। जस्य पाद पंकज रजस नपनो महंतो वाचन तिमापति तमवाक्य जस्य पाद पंकज सलील वसृष्ट मूर्धन्य आदाय शिवो शिवो भू। जिनके चरणों की धोवन गंगा जी को मस्तक पर धारण करके शिव जी शिव हो गए। उस शिव को कौन पूछता दिवे नित्य भंगे रहे प्रेतन के संग ऐसे कुछ तो वो नंगे जो था गंगे शिव से धारण कृष्ण की तरह धोवन को धारण करके वो महादेव जी के दिगंबर बाघंबर जो सर्पों के मानव पहनने वाले संसार में रहने वाले ऐसे शिव भी महाशिव हो शिव शिव हो शिव को भी परम मंगल कर जिनके चरण गुरु को शिव ब्रह्मा जी अपने मस्तक पर चढ़ाते जिनके चरणों की चौकी पर करोड़ों करोड़ों पाद दिखवा लाते रोज उपहार दे जाते स्वयं साम्यादि सहित प्रधिसर स्वराज लक्ष्मी आप्त समस्त कामा बलिन हरत की चिरलोक पाले किरीट कोटि किरीट पाले। जिनके चरणों की चौकी करोड़ों करोड़ों देवताओं के द्वारा उत्पन्न हुई है जिनके समान कोई नहीं है जिनके अधिक कोई जिनकी महिमा को मैं कहां तक बताऊं और तुम उसको इस तरह से कर उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो। एकदम से बलराम क्रोध में भर के अपनी छल को निकाले हस्तिनापुर को गंगा को डालने की चेष्टा की जोर से खींचे। उस समय दुर्योधन ने एकदम से बुला गया चरणों में गिर पड़ा पाही मां पर हे अनंत हे प्रभु मैंने आपकी महिमा को नहीं समझ पाया मैं मूर्ख हूँ बड़ा अज्ञानी हूँ मैं कभी कभी सुना था किंतु राजा से उस बलराम जी को तुम लोग साधारण नहीं समझ जस्य मूर्धनि अधाय सहस्र जीव इदं ब्रह्मांड आवति सशस्त्र भाति। बलराम जो शक्तिशाली था दो बल है जिनके स्थान से कला अनंत से इस ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर धारण करते जैसे कोई सरसों की दाने को धारण उनकी महिमा को कौन बोल सकता इन उस ब्रह्मांड के भी धारण कर रखकर उनको पता ही नहीं चलता कि ब्रह्मांड कहाँ है मेरे मस्तक हजार खानों के बल में इतने बड़े 50 करोड़ डोजन का जो ब्रह्मांड है एक ही ने ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है करोड़ों अनंत है जो बलराम से कला है अंश के अंश के अंश को कला और उसको इन धारण करते और धारण करते हुए कृष्ण के नाम गुण लीला कथा में ऐसे मत रहते हैं उनको होश ही नहीं कहा जैसे कोई मतवाले हाथी पे मस्तक पर सरसों के दाना रखा जाए उसको क्या पता चलेगा। गाय गुणानंद सतन आदि देव अशेषो नाम संवसी जब पुरानी बात दुर्योधन की याद आई कि विदुर चाचा और सब बोलते थे इनके संबंध में आज मैंने सच में देखा इनकी महिमा इनका बल को कौन गिनती करेगा चरणों में गिर पड़े क्षमा करो। आज भी हस्तिनापुर बलराम जी की महिमा को गान करते हुए उस गंगा की दिशा को झुका हुआ बता रहे हैं कि बलराम जी क्या क्या उनका बल है ऐसे बलराम जी के प्रति यदि कोई अपमान करे सहन कर लेते लेकिन ऐसे बलराम जी के जो प्रिय जो बलराम जी गए थे बादशाह बलराम जी का तत्व जानते हैं कि स्वयं भगवान सब कुछ कर सकते हैं लेकिन बादशाह जो है उनको रुकने नहीं दिया कहीं कुछ हो जाएगा वहां झगड़ा होगा कौन सा आ जाएगा कौन देखेगा पीछे पीछे भागेगा। जिस समय लक्ष्मण रुकने राम जी की सेवा में थे जो जनकपुर के पुष्प वाटिका में राम जी गुरुदेव के अर्चन के पुष्प लेने जा रहे हैं देखिए कृष्ण भी राम जी भी इनके अपने लक्ष्मण जो कितना प्रेम करते इनके अंदर कोई दुराव नहीं है अपने हृदय के संपूर्ण भावों को बोल देते जानते कि जो लक्ष्मण है वो मेरा ही अपना बन गया है मैं जो कुछ बोलूंगा वो सही सही मेरे को समझेगा और मैं क्या सोच रहा हूँ उस समय उनको सेवा कर पाए। जब पुष्प वाटिका में प्रवेश हुए फूल को चयन कर रहे थे फूल तोड़ते तोड़ते राम जी के मस्तक मुख पर श्वेत के पसीने आ गए उसी समय में क्या देखते हैं जानकी जी अपने सखियों के साथ वो भी गौर पूजन के लिए आए और उसी मार्ग से गुजरे राम जी उनका प्रथम दर्शन देखते के साथ सीता जी तो नहीं देख पाई राम जी देख लक्ष्मण जी से कहने लगे हृदय के बोल लक्ष्मण मैं सच कहता हूँ रघु बंसी है और मेरा मन कभी असत पथ को नहीं जाता कभी मन कुछ सोचता नहीं लेकिन आज मुझे कुछ ऐसा हो रहा तुम बताओ क्या है? वहां पर राम जी बोले लक्ष्मण जी से, अपने हृदय के भाव बता रहे हैं। लक्ष्मण वैराग की मूर्ति, उनके सामने अगर श्रृंगार का वर्णन करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। संसारियों का आगे जैसे बातें करें तो वो लोग उसका नाटक कर डाले। लक्ष्मण को अपने हृदय के भाव बताते हैं, लक्ष्मण ये जो देवी आ रही है जानते कौन है? मैं बताता हूँ। ताप जनक तनया रसोई, धनुष जग के कारण होई, जास बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन। लखन वही जनक नंदी जानती है जिनके लिए जनक गुरु संवर हो रहे हैं, जिनके लिए हम गुरुदेव के साथ संत के साथ यहाँ आए हैं, और आज उनका इस संवर में धनुष जग होगा जहाँ पर बड़े बड़े राजा लोग आएंगे। लेकिन आज मेरे दिल को देख करके कुछ अटपटा सा हो रहा है। इनकी जो शोभा है मैं कह नहीं सकता, जास बिलो की अलौकिक, प्राकृतिक सौंदर्य नहीं है, ये सौंदर्य भाव के द्वारा नहीं, महाभाव का जो प्रथम स्तर है वहां तक के सौंदर्य का प्रकाश है। इसको देख करके मेरा जो मन जो कभी क्षुभित नहीं होता है क्षोभ को प्राप्त। लक्ष्मण जी राम जी के मनोभाव को समझ गए, ओ बोले कुछ नहीं, उनको पकड़ करके थोड़ा आगे ले गए और बोलिए आप आराम से बैठिए, मैं थोड़ा श्रृंगार कर लू। सोचे जानकी जी को तुमने दर्शन कर लिया, लेकिन जानकी जी को दर्शन करेंगे तो जरा इनका सौंदर्य और बड़ा हो। बढ़िया मैंने पुष्प को चयन करके राम जी के सुंदर मस्तक में लगाई, मुकुट बना करके अच्छे सरका बनियों की सजाए, अच्छे से उनको श्रृंगार करके फिर बोले चलिए आप पुष्प चयन कर आगे बढ़े हैं। अर्थात गुरु होने के, गुरु जो होते हैं उसने कहा कि निकुंज दोनों रति के लिए सीधे, अर्थात किस प्रकार कृष्ण की राधा जी की सेवा को कैसे परस्पर को मिलाया जाए, इसमें गुरु जी बड़े दक्ष होते। लक्ष्मण जी दक्षता के साथ राम जी को श्रृंगार किया, जानकी जी का श्रृंगार तो सचमुच कर ही दिया, राम जी का सौंदर्य थोड़ा और बढ़े। कभी गुरु ये नहीं देखते कि हमारे जो तत्व हमारे जो आराध्य है वो कहीं कम पड़ जाए, निकल पड़े, तो परस्पर के प्रेम में कोई व्यर्थ था। उनको और सुंदर उसको सजा करके आगे ले गए। एक सखी जो जानकी जी के साथ आई हुई थी कुछ चंचल स्वभाव के, उनसे विलग होकर के पुष्प बांट कर निहारने लगे, और निहारते निहारते राम और लक्ष्मण दोनों देख करके तुरंत जा करके बोलती है जानकी तुम ध्यान बाद में करना, गौरी पूजन बाद में कर लेना सखी, अभी से जो सौंदर्य आए उनका तुम ध्यान। सखी भी बड़े चतुर गुरु के समान है, क्या है अरे सोच ले मैं क्या हूं, यदि मैं कहूं कि दो राजकुमार यहाँ पर आए हैं फूल तोड़ने के लिए तो जानकी भी बोलेंगे लोग कैसा राजकुमार जो स्वयं फूल चयन करने आए। राजकुमार तो होते जिनके नौकर सेवक फूल तोड़ के ले जाते पूजा पाठ जो जरूरत हो, तो वहां पर सखी थोड़ा बात घुमा करके झूठ बोले। कभी कभी भगवत सेवा में झूठ भी बोला जाए तो पाप नहीं होता। मत निमित्तं कृतं पापं मत धर्माय कल्पते मम अनादि धर्म की पाप से मत प्रभाव। तो सखी बोल रही है कि देखकर बाघ कुमार तो हुआ है नव वयस सब फास, तो राजकुमार बाघ देख फूल लेने में वो तो दृष्टा है, देखते हैं देखने के लिए बड़े सुंदर कैसे है। श्यामल गौर कबुकिनी बखानी जीरा अनयन नयन बिनुवानी, एक श्याम वर्ण कर एक गौर वर्ण से ना कैसे कहो कहो कहो, बोले करने वाला तो देखा नहीं और जिसने देखा वो बोल नहीं, क्योंकि जीरा अनयन नयन बिनु जीवा कह सकती है लेकिन अंधी है। ये जीवा ने सौंदर्य को स्वयं दर्शन नहीं किया, आंखों ने देखा लेकिन गूंगे हैं, बोल नहीं सकते, इसका शब्द नहीं है, ये तो स्वयं चल करके देखने की विषय, स्वयं अनुभव अनुभव गम है। आप स्वयं चल उस समय जब आए लक्ष्मण जी देखे राम सप्ताह करके लता के ओट में जाकर छुप रहे हैं, जानकी जी को परस्पर दर्शन करने को उनका हृदय स्तंभित हो जा रहा है, आत्मसात्विक भाव का उदय हो रहा है, ठीक से जानकी को वो देख नहीं पा रहे। लक्ष्मण जी ने लता को जो आवरण था उसको हटा दिए अनावरण कर दिए, और उसके मत से राम जी ने जानकी जी को देखा और जानकी जी ने राम जी को देखा, लक्ष्मण जी आनंद हो गया, सोचे आज हमारा सेवा सफल हो गया। जानकी जी राम जी को देखने मात्र से प्रथम दर्शन से आके बल कर और मन में सोचते दोबारा देखो कहीं कोई दृश्य ना मिले, एकदम से हृदय में उनको धारण करके ताला लगा दे, बस सहज सामरो तो सहज सामरा मेरे हृदय लक्ष्मण जी समझ गए। राम जी को वहां से लेके बोले चलिए हो गया, उधर सक्षम जानकी जी को लेके आए और संबंध में जाकर के सब उपस्थित होते हैं। और यहाँ की जो लक्ष्मण जी की सेवा, राम जी जब धनुष तोड़े तो कैसे पृथ्वी को दबाते हैं, जब परशुराम जी आए तो उस समय लक्ष्मण जी आगे बढ़ करके स्वयं जहाँ लक्ष्मण जी तो वहां पर राम जी को आगे नहीं जाने, स्वयं उनसे बातचीत करने और उस कितने प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ, जिससे भरत जी आते राम से मिलने के लिए। लक्ष्मण जी मन में सोचते हो भरत जी का दूसरा चाल, पहला चाल तो राम जी को बल में भेज दिए, हम दूसरा चाल है राम जी का सहाय समझ करके और चाहते भी मैं इनको ही पराजित कर दूं, समाप्त कर दूं, अयोध्या को निष्कर्षक बना, ऐसे भाव उठने लगे। आने तो कोई बात नहीं, मैं भरत को देख लूंगा, उस पर मैं छठी का चूड़ी याद मिलवा दूंगा। राम जी कहने लगे कह रहे लक्ष्मण ऐसे भरत के प्रति भरत के कभी मन हमारे प्रति दुविधा जो विचार नहीं हो सकता, मैं जानता हूँ भरत कौन है, भरत शरीर को राम सनिधि राम जप जगत भरत जप जगत, भरत के समान राम के कौन प्रिय, में सारा जगत तो राम राम करते हैं भरत राम जी भरत भरत के क्या प्रकार। इस प्रकार यही बलराम जी अनंत रूप धारण करके निवास सच्चासन पादुकां से गोपाल धान वर्षा आतक बार नादी शरीर का भेद इस तरह से ताम में दो जल दो चीजों से श्रीजो बनी ये आसन भूषण बन व्यंजन छत्र चावल होकर के अनंत वैकुंठ अनंत संकर्षण रूप होकर के गर्भो दशाई कानन साई गोपी साई से अनंत रूप धारण करके उनके लीलाओं में सहयोग करे सेवा करे, ऐसे अनंत देव के महिमा को कौन वर्णन करेगा जो कृष्ण के समाज संपूर्ण लीलाओं को भी धारण करते। कविराज वृंदावन ठाकुर जी बोले नपुंसक जैसे नाचे कहे बलराम रे राष्ट्र में कौन शास्त्र ये तब परिहारी यदि केवल पाप निंदा करे तब थारे लाती मारे सिर रूप करे गणनाथ जमीन पानी प्रतिषेध वा सौ निकाल तथापि ब्राह्मणों बंदे नित्यानंद प्रदान हो जाओ। वृंदावन ठाकुर जी के नित्यानंद प्रभु के प्रति बलराम जी के प्रभु जी निष्ठा अपने आप में अपूर्व आदर रखनी है, कहते इतना शून्य करने के बाद भी अगर नित्यानंद प्रभु जी को निंदा करता है कहाँ राष्ट्र के कहाँ ऐसे कि वो कृष्ण के समान कैसे हो सकते हैं, वो कृष्ण की बराबरी कैसे कर देता है, इससे दुष्ट को ऐसे पापी को मैं सिर पर लात मारूं जिससे कम से कम चरण धूलि पर तो उसका सिर बुद्धि सुधर जाए, चरणों के प्रार्थ उसका मस्तक सही हो जाए और नित्यानंद बलराम तत्व को समझने में समर्थ हो जाए, ऐसे नित्यानंद प्रभु को कौन महिमा को बोल। बोलिए नित्यानंद प्रभु की जय, श्री बलराम प्रभु की जय।
बहुत अच्छा, इसके बाद में श्रीमान तीर्थ महाराज जी श्री बलदेव तत्व के संबंध में बोलेंगे। बहुत अच्छा अच्छा वक्ता लोग बहुत सुंदर बोल रहे हैं।
बिना आधार के कोई वस्तु आधारित नहीं होता है, इसलिए सांखनी शक्ति जो है बलदेव प्रभु आधार है जो कि संपूर्ण विश्व संसार उन्हीं से ही प्रकट हुआ है। जितना भी चीज जगत चिन्हमय धाम सभी कुंज बलदेव प्रभु से ही आया है और उन्हीं में ही समस्त प्रकार की लीलाएं जितने विलास जो कुछ भी है सभी कुछ बलदेव में ही स्थित होकर के ही है। इसलिए राधा कृष्ण की जितनी लीलाएं हैं सबका आधार यदि देखा जाए तो बलदेव प्रभु है और प्रत्यक्ष रूप में प्रकट रूप में साक्षात रूप में भी बलदेव प्रभु को आड़ में रख करके यानी बलदेव प्रभु को सामने रख करके पीछे राधा कृष्ण की लीलाएं हो रही है क्योंकि बलदेव प्रभु के वसन जो है नील वसन है और राधा जी की साड़ी भी नील साड़ी है। जहां कहीं छिपाना भी होगा तो छिप जाएगा उसमें कुछ पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हर समय हर लीलाओं में बलदेव प्रभु जी आ जाते हैं जिससे कि किसी को दूसरे को समझ में नहीं आए। अच्छा दूसरी बात जबकि देखा जाएगा कि बलदेव प्रभु कृष्ण के अभिन्न विग्रह एक ही स्वरूप तो है भिन्न मात्र का एक ही स्वरूप है शरीर से भिन्न भिन्न देखने में एक श्याम बना तो दूसरे गौर बना केवल इतना ही अंतर मिलेगा और कोई अंतर नहीं है। बलदेव प्रभु जी ब्रज में जो कि वैभव तत्व के रूप में कृष्ण के स्वयं ही प्रकाश है जो अभिन्न स्वरूप में और वही जबकि द्वारका में होंगे तब वैभव विलास विग्रह हो जाते हैं। तो यहाँ ब्रज में वैभव प्रकाश क्योंकि माधुर्य अवतार माधुर्य विलासी राधा के कृष्ण के साथ में बलदेव प्रभु भी इसी प्रकार वहां पर सिंगा और तो उसमें सिंगा धारण करते हैं केवल सिंगा बजाते हैं यहाँ पर कोई अस्त्र धारण नहीं किया जैसे कृष्ण ने कोई अस्त्र धारण नहीं की चक्र धारण नहीं किया तो इसी प्रकार माधुर्य विलासी जहाँ पर माधुर्य की पराकाष्ठा है वहां पर ऐश्वर्य को एक तरफ छिपा के रखा और जब मथुरा और द्वारका में आए उस समय बलदेव प्रभु जी हर मुसल धारण किए कृष्ण ने चक्र सुदर्शन धारण किया असुरों का संहार किया ब्रज में भी बड़े बड़े असुर आए उनको पछाड़ दिया माधुर्य में ही भगवान की भगवत्ता है ऐश्वर्य ऐश्वर्य वैराग्य जहाँ परिपूर्णतम रूप में प्रकाशित हुआ है वहां पर भगवत्ता कही जाती है परंतु ऐश्वर्य के साथ में एक अभिनव माधुर्य जो प्रकाशित कर दिया है यही भक्तों के लिए अतिशय चमत्कारकारी है। इसलिए श्रीमद् भागवत जी ने कहा है कि भगवान ऐश्वर्य में रहते हैं और ऐश्वर्य में लीला करते हैं परंतु ऐश्वर्य में रहते हुए जगत के लोग बिना ऐश्वर्य के भगवान को पहचान भी नहीं कर पाते और न कर सकते केवल ऐश्वर्य को देखता है जब ऐश्वर्य को देखेगा तब पहचानेगा नहीं तो कहेंगे कि अरे ये कौन आ गए। जैसे देवकी वसुदेव के सामने भगवान कृष्ण जब आए चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के दिखाया कृष्ण ने कहा यदि मैं ये चतुर्भुज रूप नहीं दिखाता तो मुझको भगवान रूप में तुम विश्वास नहीं कर पाते इसलिए मैंने ये स्वरूप दर्शन कराया। तो इसी प्रकार देखा जाता है कोई भी व्यक्ति अब भगवान के ऐश्वर्य बिना वो समझ नहीं पाते तो ऐश्वर्य को ही देखते हैं तो माधुर्य को समझ नहीं पाते। इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो मेरा माधुर्य भी कैसा है कि मैं भक्तों की कितनी वर्षता शिकार करता हूँ और कैसे मैं उनके साथ में लीलाएं करता हूँ ये प्रजभूमि में ही माधुर्य को प्रकाशित करते हुए लीलाएं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जैसे माधुर्य को प्रकाशित करते हुए लीलाएं की तो बलदेव प्रभु भी माधुर्य में ही रहे माधुर्य को छोड़ करके ऐश्वर्य में नहीं और ऐश्वर्य तो उनके पीछे पीछे और उनके साथ में अंदर निहित रूप में अवस्थित है। इस प्रकार ऐश्वर्य माधुर्य का ही दोनों संघर्ष लगता है कि कौन आगे बढ़े और कौन भी पीछे जाए तो ऐश्वर्य को पीछे करके माधुर्य को आगे बढ़ाते हुए अतिव चमत्कारपूर्ण लीलाएं की। इस प्रकार बलदेव प्रभु जी गुरु तत्व के रूप में सब शिक्षाएं दी है जब तक गुरु हृदय में प्रवेश नहीं करें और जिस शक्ति को प्रकाशित नहीं करें तब तक हम भजन नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने सुना है कि नारात्मा बलहीन लभ्य दुर्बल चित्त कमजोर व्यक्ति जो कि भजन साधन विहीन ऐसे दुर्बल चित्त व्यक्ति कभी भी भगवान को पा नहीं सकते। जो गुरु की सेवा नहीं करेगा पर भगवान का भजन करते रह जाए लाख वर्ष ऐसे भजन करते रहेंगे पड़े रहेंगे बोले पड़े रहोगे तो गुरु की सेवा नहीं करेंगे और भगवान का भजन करेंगे तो तभी भी भगवान की कृपा नहीं होगी। जब तक गुरु तत्व कौन होते प्रभु तो जब तक चित्त भाव नहीं देंगे हृदय में वो प्रकाशित नहीं होगा तब तक भगवान का भजन नहीं हो पाता है। भजन का मतलब क्या है? सेवा करना। कैसे सेवा करेंगे? जैसे प्रलोभन सुनाया सेवा करने के लिए और सखा बन करके कृष्ण को आनंदित करेंगे खेलने को आए परंतु वह तो कपटता की मूर्ति बन गई। इसलिए बोलते प्रभु जी ने उस कपटता को दूर करके दिखा दिया। इसी प्रकार से जितने भी लीलाएं हुई है सभी लीलाओं में कुछ न कुछ शिक्षाएं देते हुए बोलते प्रभु जी ने गुरु का काम किया। और भी दिखाते हैं जय राम घाट जय रही नंदन सभी लीलाएं प्राय करके वर्णन हुआ है। जैसे कि बोलते प्रभु जी जब ब्रज में आए उस समय जब द्वारकापुरी में कृष्ण दिवरात गोपियों के लिए रोया करते हैं ब्रज में जाने का नाम ही नहीं करते तब बोलते प्रभु जी बोले भैया तुम तो केवल रोते ही रहते हो जाने का नाम क्यों नहीं लेते हो। अंत तक नारायण होकर के बोले तुम जाना जाओ या नहीं जाना है बच्चा मैं तो जा रहा हूँ। सीता बोलते प्रभु जी निकल करके आए ब्रजवासियों के प्रेम में उनको जो आदर्शन है वे कभी नहीं भूले हैं इसलिए ब्रजवासियों के प्रति सहानुभूति और उनके प्रति जो स्नेह प्रति प्रेम और जो प्रदर्शन किया है बलदेव प्रभु जी आए और सभी से मिले सभी प्रेम पूर्वक मिले सभी रोते हुए अपनी दुख कहानी सुनाने और कृष्ण बलराम के रूप में कहने लिए किस प्रकार विरह में डूबे हुए ये सभी दिखाया। जबकि बलदेव प्रभु जी और कुछ खाने पीने के पश्चात जब विश्राम करने लगे ऐसे समय में ब्रज गोपियां आई जो कभी सामने नहीं आती कृष्ण के विरह में उन्मादित होने के कारण उनका समाचार लेने के लिए जब की गोपियां आए बैठी उस समय बलदेव प्रभु जी उठ करके बैठे गोपियों की वो दशा देख करके बलदेव जी भी आश्चर्यचकित हो गए। तो गोपियों ने पूछा कि कुशल वास्ते नरेंद्र कृष्ण क्या नरेंद्र कन्याओं को विवाह करके क्या कुशल पूर्वक रह रहे हैं आनंद से तो है कभी उनको कोई कष्ट तो नहीं है हमारे लिए तो वे भूल ही चुके हैं और तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। इस प्रकार कहती हुई एकदम उन्माद में आ गई तो बलदेव प्रभु ये समस्त देख करके स्वयं रो पड़ी और धैर्य को भी खो बैठे। गोपियों की वो दशा देख करके बलदेव जी ब्रज में आ करके कृष्ण के विरह में डूब करके श्यामानंद को प्राप्त हो गए। इस प्रकार की स्थिति बनी जो कि दिन रात बलदेव प्रभु आसन वसन भूषण छत्र पादुका चामर व्यंजन आदि करके सब प्रकार से सेवा करते हैं स्वयं भगवान हो करके भी सेवा करते हुए आदर्श दिखाया कि कैसे भगवान की सेवा करें। इस प्रकार जो कि स्वयं बलदेव प्रभु जी सेवा का आदर्श दिखाया और गुरु के रूप में समस्त जगत को जीवों को शिक्षाएं दी और सब पर अनुग्रह किया और इस प्रकार से बलदेव जी जो कि सभी पर अनुग्रह करने वाले अखंड गुरु तत्व के जो मूलभूत मित्र है आज उन्हीं के चरणों में हम पुष्पांजलि समर्पण करते हैं वे हम सब पर अनुग्रह करें। इतना कह करके मैं अपना पद को
सभी वक्ताओं ने बहुत सुंदर बलदेव जी के तत्व के संबंध में बतलाया। हम लोग पहले ये सब कथाओं का बलदेव तत्व का पहले हम लोग विवेचन किया है। जब यहाँ आते थे तब ये सब वर्णन होता था। इन्होंने प्राय सभी बलदेव जी के विषयों को, पहलुओं को इन्होंने स्पर्श कर दिया है। दो चार मैं कुछ बदलाव बोलूंगा। कृष्ण सच्चिदानंद तत्व है। सच्चिदानंद सत ची और आनंद स्वरूप है, किंतु जब इसको पृथक पृथक किया जाएगा तो कृष्ण पूर्ण अखंड चीत स्वरूप है और लादनी शक्ति राधिका जी आनंद स्वरूप और बलदेव प्रभु जी हैं सत, सत माने सत्ता स्वरूप। ये तीन मिलकर के कृष्ण है, किंतु कृष्ण अकेले ही दिखाई देते हैं, किंतु उनमें राधा जी भी हैं और बलदेव जी भी हैं और स्वयं तो वो कृष्ण है। इन तीनों के दोनों के बिना कृष्ण की सत्ता नहीं रह सकती, इसलिए कृष्ण की सत्ता, उनकी बंसी, उनके आसन बसन भूषण जो कुछ है, उनके लीलाओं के जो पृष्ठभूमि है, सब कुछ बलदेव प्रभु जी ही है। विशेष करके बलदेव प्रभु जी अभी जो उन्होंने बतलाया, कृष्ण रो तो रहे हैं, बलदेव जी कहते हैं जो चलो वृंदावन में, किंतु फिर भी नहीं आते हैं, इसके भी बहुत से कारण हैं। बलदेव जी सभी उसी समय में आए और जैसा कि इन्होंने वर्णन किया, गोपियों से भी मिले, यही नहीं उनको संतोष देने के लिए, उनका दुख दर्द भुलाने के लिए उन्होंने रास किया। वही दाऊ जी में रास राम घाट पर रास किया। रास किया कोई कोई कहते हैं कि वो बलदेव प्रभु की ही प्रेयसिया थी, उनके साथ में ही उन्होंने रास किया, किंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि अप्राकृत धाम गोलोक वृंदावन में या यहां पर भी भौम वृंदावन में उनकी लीलाएं होती हैं। कृष्ण की कृष्ण बलदेव प्रभु जो लीला किया वहां पर सभी प्रकार की गोपियां थी, सभी थी, क्योंकि उसमें कोई दोष नहीं होता। जब स्वर्ग में अस्पराओं के ही संबंध में कोई दोष नहीं होता तो अप्राकृत वृंदावन में क्या दोष हो सकता है। हम लोग समझते हैं कि रास एक गंदी लीला है। रस माने क्या? रस, रस के द्वारा गोपियों को बुलाना चाहते हैं, सांत्वना देना चाहते हैं। रस माने साथ में नृत्य करना, गान करना, इसके अतिरिक्त और कुछ मत समझो। बलदेव प्रभु जी ने उनको बुलाने के लिए उनके साथ में नृत्य किया और बलदेव प्रभु जी कैसा संगीत जानते हैं, जैसा कि कृष्ण संगीत जानते हैं। दोनों भाई राधा गोवर्धन में, गोवर्धन में होली के उत्सव पर कृष्ण बलदेव दोनों ऐसे स्वर से गा रहे हैं कि सभी लोग मुग्ध हो गए और दोनों के सामने ही वहीं पर गोपियां भी थी। इसलिए बलदेव प्रभु जी ने जो रास किया गोपियों को बुलाने के लिए, इसमें कोई भी दोष नहीं है। इसमें समस्त प्रकार की गोपियां भी रह सकती हैं, उसमें भी कोई दोष नहीं है। विशेष करके जब रास कर रहे थे तो जमुना जी को उस पर बुलाया, गोपियों को प्यास लगी होने पर वो नहीं आई, नहीं आई तो हल और मुसल से उनको खींच लिया। जमुना जी भी दो हैं, एक तो समुद्र जिनके पति हैं और दूसरी है विशाखा स्वरूप कृष्ण की सखी। उन्होंने विशाखा जी को नहीं खींचा, उन्होंने जो समुद्र में मिलती हैं जिनके पति समुद्र हैं उनको खींचा। इसलिए इसमें भी दोष नहीं है। विशेष करके और एक चीज दिखलाया, दुविध बंदर को उन्होंने मारा। दुविध रामचंद्र जी का भक्त था और रावण के विरुद्ध में ये इन्होंने युद्ध किया था राम के लिए, किंतु लक्ष्मण जी के प्रति इनकी दुर्भावना थी, निंदा किया करते थे। जब कृष्ण लीला आई राम लीला के बाद में, तो ये कृष्ण के प्रति तो इनकी भक्ति थी, किंतु बलदेव जी के प्रति पूर्व जन्म के संस्कार की वजह से ये भी बनी रही दीवित की। और उन्होंने बलदेव जी से अश्लील भावों को दिखलाया, गोपियों के कपड़े नोच डाले, तब बलदेव जी ने मुसल से उसको खींचा, हल से और मुसल से उसे मारा। तात्पर्य क्या है, भगवान का भजन करने पर भी यदि उनके भक्तों की कोई निंदा करता है बलदेव जी नहीं शांत कर सकते। इसलिए भगवान को मानते हैं और बलदेव जी को नहीं मानते हैं, ये अर्ध कुटित की भांति है। इसलिए हम लोगों को इसी प्रकार से रहना चाहिए, भगवान का भजन करते हैं किंतु भक्तों के प्रति निंदनीय व्यापार करते हैं, ये ठीक उचित नहीं है। ये एक समय में घूमते 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 नैमिषारण्य में गए और वहां पर कथा हो रही थी, वहां पर लोमहर्षण सूत वही भागवत की कथा करने बैठे थे और सौनक इत्यादि उनसे भी श्रेष्ठ महापुरुष लोग वहां पर हरि कथा सुन रहे थे। बलदेव जी आए, सभी उठ करके उनका स्वागत किया, किंतु ये दुर्बुद्धि उठा नहीं, मैं भागवत का वक्ता हूं, आचार्य हूं, भला मैं कैसे उठूं। उस समय बलदेव प्रभु जी देखा जी ये तो भाग पाठक नहीं है, ये तो महादाम्भिक है, दाम्भिक व्यक्ति को भागवत का पाठ प्रवचन नहीं करना चाहिए, इसलिए हाथ से ही ऐसे किया और उसका सिर अलग हो गया। अब तो सौनक इत्यादि ऋषि बोले अरे प्रभु आपने ये क्या कर दिया, ये हमको तो हरि कथा सुना दी थी, ओ तो मैं इसको जीवित कर दूं। बोले अब तो जो कुछ हो गया आप ऐसी कोई बात कीजिए कृपा करके कि हम लोगों को ये हरि कथा सुनने के लिए मिले। उन्होंने उसके छोटे बेटे को बैठा दिया और शक्ति संचार करके उसमें अपनी सारी शक्ति लगा दी और तब कहा कि तुम आज से इन लोगों को कथा सुनाना। यही कौन है, उग्र सभासुर, और यही परीक्षित की सभा में ये भी थे और सुखदेव गोस्वामी से इन्होंने भागवत की कथा सुनी थी। तो यदि कोई दाम्भिक व्यक्ति हो, आचार्य का अभिमान हो और गुरु और वैष्णव श्रेष्ठ लोग आते हैं उसका सम्मान ना करे, तो बलदेव जी ऐसे ही दंड देते हैं। इसलिए कभी भी
ऐसा भाव न हो। इसलिए रूप गोस्वामी ने लिखा है वैष्णव का आचार, उत्तम वैष्णव से कैसा व्यवहार, मध्यम वैष्णव से कैसा व्यवहार, कनिष्ठ से कैसा व्यवहार, ये सबको ठीक रख करके हम लोगों को आगे बढ़ना है। इसी प्रकार से अभी रामचंद्र जी की लीला में बहुत ही सुंदर सरस वर्णन किया लक्ष्मण जी के संबंध में। केवल उसी लीला में ही नहीं, बलदेव प्रभु जी खेती करते हैं। क्या खेती करते हैं? बलदेव के रूप में वृंदावन में है, वहां पर कृष्ण की लीला की उपयोगिता के लिए सारे मुक्ति मुक्त प्राप्त कृष्ण के परिकर जो है उनको सबको वही प्रकट करते हैं, या परिकर के रूप में वही है। और द्वारका में उनका चतुर्व्यूह है, मथुरा में भी चतुर्व्यूह नहीं है, वही द्वारका में है। और वहां पर अनंत कोटि मुक्त जीवों को प्रकट करते हैं जो कि कृष्ण की सेवा करते हैं ऐश्वर्य भाव से, माधुर्य भाव से वृंदावन में कराते हैं और यहां पर ऐश्वर्य भाव से, और फिर वही उन्हीं का प्रकाश वैकुंठ में नारायण के निकट में संकर्षण, महासंकर्षण, वो मूल संकर्षण, ये महासंकर्षण, महासंकर्षण परब्रह्म में वैकुंठ में राम इत्यादि हैं, नृसिंह देव जी हैं और भगवत तत्व अवतार हैं, वहां पर उनके परिकर के रूप में नित्य मुक्तों को भी प्रकट करते हैं। और कर्णाब्धिशायी विष्णु के यहाँ वही उन्हीं के दृष्टि से सारे बद्ध जीव लोग प्रकटित होते हैं, वहीं से कोई तटस्थ होने पर कोई भगवान की तरफ में देखते हैं, वैकुंठ की तरफ में, वो वैकुंठ में चले गए, और जो जिन्होंने माया की तरफ में देखा वो माया की तरफ में आए। इस तरह से बलदेव जी उनको प्रकट किया। और शेष के रूप में एक और रूप है, और वो क्या करते हैं, उन्हीं पर शेष कर्णाब्धिशायी विष्णु बैठते हैं, या गर्भोदशायी शयन करते हैं, वो लोग शयन करते हैं और उनकी सब समय सेवा करते हैं। इस प्रकार से इन पांच रूपों में बलदेव प्रभु जी सेवा करते हैं। हल और मुसल बतलाया, खेती तो करते हैं, मुसल किस लिए, पाषंडियों का दमन करने के लिए। इसलिए बलदेव प्रभु जी की आज की आविर्भाव तिथि है। संक्षेप में बहुत सुंदर और सरस रूप में बलदेव जी के तत्वों का वर्णन किया गया। बलदेव जी प्रभु जी हम पर और आप सभी पर कृपा करें जो कृष्ण तत्व में भक्ति में हम लोगों का प्रवेश, यही प्रार्थना करके आज का वक्तव्य समाप्त करता हूं। गौ प्रेमा बलदेव प्रभु जी। अब मैं गोवर्धन में जाऊंगा, कुछ लिखूंगा पढ़ूंगा, तो भी एक दिन आना।
ट्रांसलेशन
आज के चंद्रग्रहण आज के